also came. Celebrate with joy and happiness.
Oh, dekho kaun aaya, saath Baba bhi aaya. देखो कौन आया साथ बाबा भी आया शिवा एंड बाबा टुगेदर
यू आर द ओशन ऑफ लव यू आर द ओशन ऑफ लव
ओम शांति। आज आई लव ये सीरीज का 13वां दिन है, तो इसमें आज देखेंगे कि आई लव दादिया, क्योंकि दादियों से अपन इतना लव क्यों करते, प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि यज्ञ में हर एक ब्राह्मण आत्मा है दादियों से प्यार करता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि दादियों ने जैसे ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी मम्मा के कदम पर कदम रखकर के त्याग तपस्या और सेवा द्वारे इस यज्ञ को आगे बढ़ाया है, इसलिए हम सभी दादियों से इतना प्यार करते हैं। जब स्वयं परमात्मा भगवान इस धरती पर आए हैं, उस समय ब्रह्मा द्वारे इस यज्ञ की स्थापना की, और उस स्थापना के कार्य में जो महान और पवित्र आत्माओं ने अपना सर्वस्व कुर्बान किया, उनमें से हमारी दादियाँ थी, इसी कारण हम उतना प्यार करते हैं दादियों से। और तीसरी बात, क्योंकि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा इस यज्ञ रूपी छोटे से वृक्ष को रोपित किया, और उस रोपित किया हुआ वृक्ष को हमारी दादियों ने समय समय पर अपने स्नेह और प्यार से सींचा उसको, और ये ज्ञान से उसको खाद डाला, और ज्ञान से खाद डाला और समय समय पर पवित्रता के बल से और योग से बल से ये माया के तूफान और आंधी आती थी उससे उस यज्ञ की रक्षा की। इसके कारण हम दादियों से विशेष प्यार करते हैं। और जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि कोई वृक्ष है, उनका जड़ जितना गहरा होता है वो वृक्ष क्या होता है, उतना मजबूत और टिकाऊ होता है, वैसे हमारे यज्ञ ये एक संगठन है, और इस संगठन को चलाने वाले जो निमित्त आत्माएं थे, उनका त्याग और तपस्या जितना गहरा था उसी कारण इस यज्ञ को इतना आगे बढ़ा दिया। और इस यज्ञ को आग सारे एक छोटा सा वृक्ष था, लेकिन इतना विशाल वट वृक्ष हो गया और सारे विश्व की आत्माएं इस यज्ञ की छाव में आती है, तो उन्हें क्या मिलता है? सुख शांति आनंद और पवित्रता की अनुभूति होती है और उसका जीवन इतना महान बनता है। तो इतनी हड्डी से हमारी दादियों ने की है, इसलिए आज हम देखेंगे, क्योंकि भाई साहब ने बोला था कि सभी दादियों का बताना, मगर वो समय अनुसार तो नहीं हो सकता है, इसलिए अभी जून जुलाई मास है ये वाला। तो जुलाई मास यानी यज्ञ इतिहास में किसके नाम से जाना जाता है? हमारे दीदी दीदी मनमोहिनी जी के नाम से जाना जाता है। तो हम देखेंगे अभी जितनी दीदी और दादिया का होता है समय अनुसार, तो उतना देखेंगे यज्ञ में उन्हें कैसी हड्डी सेवा की और यज्ञ को आगे बढ़ाया। तो हमारी दीदी मनमोहिनी जी, जैसा उनका नाम था वैसे उनका काम था, क्योंकि जैसा दीदी का नाम दीदी मनमोहिनी था, तो दीदी भी दीदी के संपर्क में जो भी आत्माएं आती थी, दीदी ऐसा मोहित कर लेती थी कि उसको बाबा का बना देती थी, क्योंकि वो बच्चा बाबा का बन जाता था। ये दीदी में विशेषता थी। और दूसरा, जब मम्मा 1965 में मम्मा ने देह का त्याग किया, उस समय से दीदी मधुबन में रहती थी और ब्रह्मा बाबा को इस यज्ञ कारोबार में मदद करती थी। और जब ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 में अव्यक्त हुए, तो उस समय दीदी और दादी दोनों मिलकर इस यज्ञ को संभालते थे और इसकी पालना की उन्होंने, माँ जैसी पालना दी। और एक विशेषता, जैसे दीदी और दादी दोनों मिलकर इस यज्ञ को संभालते थे, जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, या एक राज्य में दो राजा ही नहीं रह सकते, या एक घर में दो कारोबार करने वाले व्यक्ति नहीं रह सकते, लेकिन दीदी और दादी देखो दो थे, लेकिन दोनों होते हुए भी इस यज्ञ को यानी एक जैसा उसने संभाला और उसमें मतभेद कभी हुआ नहीं दोनों के बीच में, और दोनों भी एक दूसरे की राय लेती थी, राय को सम्मान देती थी। जैसे कोई यज्ञ में उस समय कोई भाई या बहन दीदी के पास जाते थे कि राय पूछने के लिए, तो पहले दीदी पूछती थी कि आपने दादी को पूछा क्या, इसके बारे में दादी ने क्या जवाब दिया। जब वो भाई या बहन बोलते थे कि दादी ने दीदी दादी के पास हम गई नहीं, तो फिर दीदी उसको राय देती थी। और कोई भाई या बहन दादी के पास जाते थे और राय पूछने के लिए, तो दादी भी पूछती थी कि आप दीदी के पास गए थे क्या, दीदी ने कुछ राय दी क्या। यदि दीदी ने राय दी तो फिर दादी राय नहीं देती थी कि ये दीदी की राय वो मेरी राय है, और यदि नहीं दिया तो फिर राय देती थी। तो इतना मिलजुल कर उन्होंने यज्ञ को आगे संभाला। जैसे दीदी यानी लौकिक में बहुत धनाढ्य परिवार से थी, लेकिन घर का बहुत बंधन था बोलते दीदी को, लेकिन दीदी क्या करती, दोनों का बैलेंस रख करके चलती थी, लौकिक और अलौकिकता का। एक बार क्या हुआ कि दीदी के पति ने उसको बोला आप सिनेमा चलो मेरे साथ देखने के लिए, तो देखो दीदी तो ज्ञान में थी, फिर सिनेमा कैसे जाएंगी। फिर उसने बाबा को पूछा कि बाबा हमारे पतिदेव बोल रहे हैं कि सिनेमा चलो, तो जाओ क्या? तो क्या बोलाऊंगा बाबा ने? हाँ, तो बाबा ने बोला जाओ, क्योंकि आप धनाढ्य परिवार की है और यदि आप नहीं जाएंगी तो लोग झगड़ा करेंगे और आपको ज्यादा बंधन में डालेंगे, और आपके साथ साथ जो भी बाकी कन्या या माता यज्ञ में आती है तो उसके ऊपर ही बंधन डालेंगे, इसलिए भलाई जाओ, लेकिन क्या बाबा की याद करो वहां पर जाकर के, एक शांति समाधि में रहना बोले वहां पर जाके। देखो दीदी ने वैसा क्या गई, उसके शरीर के साथ तो पतिदेव के साथ थी, लेकिन मन एकदम बाबा पे लीन था, इतनी बाबा की याद की उन्होंने और अनुभव किया। ये एक दादी के जीवन की बात। दूसरी, लौकिक में जैसे पतिदेव उसको उस परिवार से वो अलग होना चाहती थी कि लौकिक से ये होके बाबा के यज्ञ में समर्पित होना, ये उनका लक्ष्य था, लेकिन पतिदेव भी अच्छे स्वभाव के थे, कभी कभी उनको जाने देते थे, वो बंधन नहीं करते थे उतने, कभी कभी वो मंडली में जाती थी दीदी तो मना नहीं करते थे, इस कारण स्वभाव भी अच्छा था, लेकिन दीदी उनसे मुक्त होना चाहती थी पतिदेव से। तो फिर वो बाना भी ढूंढ रही थी। एक दिन क्या हुआ, उसके पतिदेव को बहुत गुस्सा आ गया, क्रोध के कारण उसने दो थप्पड़ दीदी को लगा दिया। तो फिर क्या हुआ, दीदी का जो चश्मा था वो गिर गया और उसके ग्लास टूट गया, फिर दीदी को क्या बायना मिल गया। और उसी समय दीदी ने कहा कि देखो आपको मेरे से प्यार है कि मेरे विकारों से प्यार है, यदि मेरे विकारों से प्यार है आपको, जो विकार है उससे प्यार करती है आप, तो फिर आज से आपका मार्ग अलग मेरा मार्ग अलग। और उसी क्षण दीदी ने उसका पतिदेव का त्याग कर दिया और वो मंडली में समर्पित होगी। तो ये दीदी की विशेष निर्णय लेने की शक्ति थी। और दीदी में एक था कि समय का बहुत याकुरेट ध्यान रखती थी, क्योंकि दीदी कहीं पर जाती थी तो एकदम समय के पहले 5 मिनट पहुंच जाती थी, कभी लेट नहीं होती थी, यानी खुद भी लेट नहीं होती थी और दूसरे को भी लेट हुआ तो अटेंशन दिलाती थी, उसको पसंद नहीं था। तो ऐसी एक बात एक सुना था दीदी की, एक बार अमृत वेला के बाद एक भाई ने क्या किया, जो रिकॉर्ड बजाता था, तो उसने 5 मिनट ज़्यादा अमृत वेला करा, यानी अमृत वेला होने के बाद 5 मिनट एक गीत बजा दिया, और उसको बहुत खुशी हो गई कि चलो भाई मैंने 5 मिनट ज़्यादा गीत बजाया, तो उसी कारण सभी लोगों ने एक्स्ट्रा योग किया, तो खुशी में मस्त रहा वो, कई एक योग किया। लेकिन इधर दीदी की जो दिनचर्या थी वो मिस होगी, तो फिर दीदी ने वो भाई को 11 बजे बुलाया और उसको बोला कि देखो आपके कारण मेरी दिनचर्या खराब हो गई, मेरा रिकॉर्ड खराब हो गया, क्योंकि आपने 5 मिनट ज़्यादा गीत बजाया इसलिए मैं लेट हो गई। जो लच्छू दादी उनको चाय बना के देती थी, वो बराबर समय पर चाय बना के रखती थी, जब 5 मिनट लेट होगी तो वो चाय ठंडी होगी, तो फिर उसको डबल चाय बनानी पड़ी। फिर उधर दीदी का समय एक्यूरेट था, तो बाथरूम में जो भाई ने पानी रखा था वो ठंडा हो गया, तो फिर वो स्नान किया दीदी ने तो वो वहाँ पर भी लेट होगी, फिर क्लास में लेट हो गई। इसके कारण दीदी ने वो भाई को समझाया कि ऐसी दोबारा गलती नहीं करो, हर कार्य समय पर करना है, समय से ये नहीं करना, ऐसे अटेंशन देना है। तो ये दीदी में विशेषता थी कि हर समय को बहुत याकुरेट ध्यान देती थी। और तीसरी दीदी की तो बहुत सारी विशेषता है, क्योंकि बाकी भी दादी का भी बताना है। तो दीदी यानी जो सौगात देती थी, सौगात भी ज्ञान युक्त रूप से देती थी, जैसे उस समय बाबा को मिलने के लिए बहुत पार्टी आती थी और दीदी सभी को सौगात देती थी, तो उस समय पेन और डायरी दीदी देती थी सभी को, तो उस डायरी में क्या एक स्लोगन लिखा होता था, अभी भी डायरी में स्लोगन लिखा रहता है, तो वो स्लोगन सुनाती थी, उसका स्पष्टीकरण बताती थी और उसको बोलती थी कि आपको क्या प्रेरणा मिली इस स्लोगन से, तो इस प्रकार ज्ञान युक्त बाद में उसको सौगात देती थी। तो ये दीदी में विशेषता थी। और दीदी का स्लोगन था कि अब घर जाना है, क्योंकि यज्ञ कारोबार संभालते हुए बाकी झगड़ा करते हुए भी दीदी एकदम वैराग्य वृत्ति थी कि सदैव उसको यही ध्यान रहता था अब घर जाना है, कभी भी शरीर का कोई भरोसा नहीं, कभी भी छूट सकता है, तो इस प्रकार वो वैराग्य जीवन था दीदी का। तो अभी हम देखेंगे दादी प्रकाशमणि जी का। तो दीदी और दादी दोनों मिलकर यज्ञ संभालते थे, और जब दीदी ने शरीर छोड़ा तो फिर दादी अकेले यज्ञ को संभालती थी। तो उसके पहले दादी ज्ञान में आई तो उसकी एक बात सुनाता हूँ कि जैसे पहली बार दादी ब्रह्मा बाबा के घर गई थी, तब ज्ञान में नहीं थी, अपनी सहेली के साथ सखियों के साथ वो गई थी घर। तो फिर ब्रह्मा बाबा ऊपर के कमरे में थे, तो दादी को उसने बुलाया कि ऊपर आओ, तो फिर दादी अपने सखियों के साथ ऊपर पहुंची। फिर बाबा ने पूछा कि बच्ची आपको पैंट कोट वाले से शादी करनी है या पीतम्बर धारी से शादी करनी है, तो वो बात दादी के समझ में नहीं आई कि दादी को लगा मैं पहली बार बाबा को मिलने आई और बाबा ऐसा क्यों पूछ रहे, मेरे को शादी की बात क्यों कर रहे। तो फिर बाबा ने और स्पष्टीकरण करके बताया कि आपको लौकिक इस कलयुग की दुनिया के कोई लड़के से शादी करनी है क्या श्री कृष्ण से शादी करनी है। तो बाद में झट से वो बात दादी के समझ में आ गई और दादी ने बोला कि मैं कृष्ण की मीरा हूँ, मैं कृष्ण से शादी करूंगी और मेरा शादी उनके साथ होगी। फिर बाबा ने, क्योंकि दादी उस समय ज्ञान में नहीं थी, रंगीन कपड़े और बहुत जेवरात पहन करके उनके यहाँ गई थी, फिर बाबा ने बोला कि आप फिर श्री कृष्ण से शादी करनी है तो फिर रंगीन कपड़े क्यों पहने आपने और ये इतने सारे जेवरात क्यों पहने हैं, तो ये तो दुनिया के लड़के को आकर्षित करने के लिए पहनते हैं। तो फिर देखो उसी समय दादी ने निर्णय लिया कि आज से मैं रंगीन कपड़े और दागिने नहीं पहनूंगी, और उसी क्षण से दादी ने वो त्याग कर दिया उस रंगीन कपड़े का और जवाहरात का। तो इस प्रकारे दादी ने एक झटके में और निर्णय ले लिया। और दादी की विशेषता थी कि आप सभी को ही पता है कि दादी इतने संगठन चलाती थी और संगठन में बहुत महा का प्यार स्नेह देती थी और जो भी सेवा करती थी सब मिलजुल कर करती थी, दादी भी उनमें इन्वॉल्व हो जाती थी सेवा करने के लिए। तो जैसा ये ओम शांति भवन का निर्माण का कार्य चल रहा था तो उस समय बहुत पत्थर थे बोलते यहाँ पर, तो सभी भाई लोग पत्थर तोड़ रहे थे, दादी भी खुद छोटा सा हथौड़ा लेकर गई और तोड़ने लगी। तो उस समय देखो भाई को इतना उमंग गुस्सा आ गया कि जे काम को 2 घंटे लगते हैं वो काम 1 घंटे में कर दिया, क्योंकि जब दादी इतनी बड़ी यज्ञ की मुख्य होते हुए भी वो खुद सेवा कर रहे थे, कितना उमंग बढ़ेगा। तो इस प्रकार दादी हर एक भाइयों का उमंग उत्साह बढ़ाती थी और दादी में रमणीकता थी, इतने इसमें बिजी होते हुए भी बहुत रमणीक ये करती थी, हर एक को भाइयों को पिस्पा के ले जाती थी, वहां पर पिकनिक करती थी, खुद भी डांस करती थी उनके साथ, गीत गाती थी और सबको हंसाती थी बहलाती थी। ये दादी में विशेषता थी। और एक बार की बात, किसी माता ने दादी के लिए एक उलन की टोपी लाई थी दादी को पहनने के लिए, और उसी समय एक दीदी एक बहन जी ने एक चांदी की सीटी लाई थी। तो उस समय दादी ने क्या किया, वो कैप थी वो सिर पर रख दिया और सीटी जोर जोर से बजाने लगी और सभी को बहलाया, वो खुशी का उमंग उत्साह निर्माण किया। तो इस प्रकार दादी में बहुत सारी विशेषताएं थी। तो अभी हम देखेंगे दादी निर्मल शांतामणि का, क्योंकि दादी निर्मल शांतामणि ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी थी और ब्रह्मा बाबा ने उनके बहुत प्यार से अज्ञान काल में बहुत प्यार से उसके लाड प्यार से पालना दी उसको, को बाबा खुद उसकी कंगी करते थे बोलते, यानी इतना स्नेह प्यार देते थे। और जब उनकी शादी हो गई तो बाबा खुद उसके लिए कार भेजते थे उसको आने के लिए, इतना स्नेह प्यार था। मगर जब बाबा के अंदर शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाद में सत्संग शुरू होगा तो फिर बाबा के मन में एकदम वैराग आ गया। और दादी ने भी जब देखा कि बाबा में इतना परिवर्तन हो गया तो फिर उसको ये लगा कि ये कोई तेरी विशेष आत्मा इसके तन में आती है, इसी कारण बाबा में इतना परिवर्तन हो गया, इतने वैराग्य हो गए। तो वो प्रेरणा दादी को मिली और दादी फिर वो मंडली में समर्पित होगी, घर का वो त्याग करके लौकिक परिवार का। तो देखो इतने बड़े परिवार की होते हुए भी दादी यज्ञ में हर प्रकार की सेवा करती थी, क्योंकि घर में तो अमीर थे, सब नौकर चाकर थे उनके यहाँ, कभी दादी ने वो कभी पानी का ग्लास भी नहीं उठाया होगा, इतने वो ये थे। मगर यज्ञ में आने के बाद दादी ने हर प्रकार की सेवा की, क्योंकि बाबा पहले दादी को बताते थे और फिर दादी करती थी वो सेवा, क्योंकि बाबा बोलते थे आपको सत्य में ऊंचा पद प्राप्त करना था ये सेवा करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, क्योंकि मैं आपको अधिकार से बताता हूँ तो आपको बोलकर बाकी भी करेंगे आपको देख करके, तो इसलिए बाबा पहले दादी को जो भी सेवाएं बताते थे और दादी प्यार से करती थी। तो दादी इसमें चप्पल भी सिलाई करने का सेवा करती थी यज्ञ में, वो बर्तन भी जी, हाँ कल के मुरली में था सिरू बहन जी बता रही थी, और बर्तन भी माजने की सेवा करती थी, बर्तन भी इतने बाबा के याद में नशे के साथ साफ करती थी। तो एक बार ऐसे बर्तन साफ कर रही थी दादी, तो एक बड़ा बर्तन था तो उसमें उसका हाथ नीचे तक तलवे तक पहुंच नहीं रहा था, तो फिर दादी ने इधर उधर देखा कोई देख तो नहीं देख रहे थे, तो एकदम कूद गई उस बर्तन में, बड़ा बर्तन था और पाँव से वो घिस रही थी और इतनी मस्ती में बाबा के याद में डांस भी कर रही थी। जब ब्रह्मा बाबा ने देखा तो उसको लगा बच्ची को क्या हो गया, मम्मा को पूछा बच्ची की तबीयत ठीक तो नहीं है क्या, नहीं है ये ऐसे डांस क्यों कर रही पतीले में, तो जाके देखो। तो फिर मम्मा गई तो देखती है तो बाबा की मस्ती में याद में मस्त बर्तन साफ कर रही थी। तो देखो दादी में कितनी ये थी, इतनी अमीर घराने की होती हुई भी यज्ञ में बाबा के याद में मस्ती में मस्त होके सेवा करती थी। और एक दादी की विशेषता, बस भी चलाती थी बोलते वो समय, देखो लेडीज यानी बस चलाना कितनी कमाल की बात है, लेकिन दादी बस भी चलाती थी, बस भी चलाना सीख लिया था। और उस समय सिंध हैदराबाद में एक दिन दादी बस चला रही थी तो उतने में पुलिस ने वो रोकी, तो दादी ने इतने नशे के साथ बोला आपने बस क्यों रोकी, बोले आपको पता नहीं का बस में खुदा बैठा है और आपने रोकी है, तो वो डर गया पुलिस और वो बाजू हो गया और दादी ने फिर बस आगे लेके गई। तो इस प्रकार दादी निर्मल शांता ने जो भी सेवा करती थी नशे के साथ करती थी, और बाबा पर पूरा 100% निश्चय था उनको, जो भी बाबा कहेंगे वो सिर माथे पर उस प्रकार वो हर कार्य करती थी। तो एक बार दादी को दमा की बीमारी हुई थी, फिर ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, वतन से वो एक संदेश को भेजा और वो बाबा से यानी संदेश लाने के लिए कहा कि दादी की बहुत दिन से बीमारी ठीक नहीं हो रही क्या करें। तो फिर संदेश ने संदेश लाया कि कि दादी को बर्फ से नहलाओ और बर्फ का पानी पिलाओ। डॉक्टर साहब बैठे हैं कि दमा की बीमारी होती है, यदि उसको ठंडा पानी पिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा? राम नाम सत्य है, क्योंकि वो तो उस दमा के बीमारी वाले को तो बहुत ये रहता है, उसकी बीमारी और बढ़ जाती है। लेकिन देखो दादी का इतने निश्चय कि बाबा कह रहे हैं तो ठीक है, दादी को ही पता था कि क्योंकि ठंडी रहता है वो बर्फ का पानी और पियेंगे तो अपनी वो शांति हो जाएंगी। पर निश्चय के साथ उसने ठंडे बर्फ के पानी से स्नान भी कर लिया और पानी भी पी लिया। पर देखो आश्चर्य क्या हो गया, उसका जो दमा की बीमारी हमेशा के लिए मुक्त होगी उनसे वो। हाँ हाँ तो देखो नीचे बात तो हुई, लेकिन नीचे की बात दादी का कितना निश्चय था बाबा के प्रति कि जो भी बोलते हैं मुझे करना है कुछ भी हो जाए, तो ये निश्चय था। और एक विशेषता दादी की थी कि दादी जी किसी से गलती भी, किसी कमी कमजोर नहीं देखती थी, और किसी की गलती भी होगी एकदम प्यार से समझ देती थी। तो ऐसे एक बहन किचन में गैस पर वो दूध रखा था और वो उबाल रही थी, तो उबलते उबलते वो दूध उबल रहा था और वो बहन को कोई दूसरे जगह कोई सेवा आई होंगी तो वो किचन से निकल कर दूसरे कमरे में चली गई, और वो बाद में दूध क्या हुआ उबल उबल कर नीचे गिर रहा था, गिरने लगा। उतने में दादी वो किचन में आ गई, तो दूसरे दादी ने देखा कि दूध नीचे गिर रहा है पूरा, उतने में वो बहन आ गई। तो बहन इतनी घबरा गई कि अब ये दूध नीचे गिर रहा है पतीले से और दादी आ गई तो मेरे को बहुत डांट लगाएंगी मेरी, तो इसलिए घबरा गई एकदम वो। मगर दादी ने कुछ भी बोला नहीं उसको, दादी ने बोला कि देखो जैसे सतयुग में दूध की गंगा बहेंगी तो यहाँ पर भी दूध की गंगा बह रही है, आप देख रहे नहीं है, तो ये रिहर्सल कर रहे हैं क्या आप, ऐसा दादी ने उसको बोला। और वो बहन की जो घबराहट एकदम कम हो गई, उसको लगा चलो मेरी डांट तो बच गई, अभी दादी मुझे खूब नहीं करेंगी। बाद में दादी ने वो बताया, फिर प्यार से बोला कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, कि ध्यान रखना जो भी अपन कार्य करते ध्यान से करना। तो इस प्रकार दादी ये यानी जो भी बताती थी तो वो भी प्यार से स्नेह से समझाने देती थी, तो ये दादी में विशेषता थी। और दादी वैराग्य वृत्ति थी कि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा उनके लौकिक अलौकिक दोनों ही पिता थे, तो फिर मगर वो रोई नहीं। तो बाद में कई दादियों ने पूछा उनको कि बाबा ने शरीर छोड़ा, बाकी दादियां तो रो रही थी, लेकिन आप क्यों नहीं रोई? तो उसने बोला बाबा ने बोला है ना कभी रोना नहीं करके, क्योंकि दादी की मम्मी ने जब शरीर छोड़ा था, जसोदा माता ने शरीर छोड़ा था, उस समय भी वो रोई नहीं थी, क्योंकि उस समय तो ब्रह्मा बाबा थे। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था उस समय भी वो बात उसको याद आ गई कि बाबा ने कहा है कि रोना नहीं, तो बिल्कुल वो रोई नहीं। इतनी वैराग्य वृत्ति थी दादी की। ये होगी दादी निर्मल शांता की विशेषता। अभी हम देखेंगे दादी मनोहर इंद्रा। मनोहर इंद्रा भी यज्ञ में बहुत कुछ उसने त्याग किया, क्योंकि मनोहर इंद्रा दादी यानी सबको पता होगा कि यज्ञ इतिहास की हिस्ट्री बहुत अच्छी सुनाती थी, क्योंकि इतनी स्पष्ट शब्द में सुनाती थी कि बाबा का साकार यानी चरित्र एकदम साकार कर देती थी, इस प्रकार की वो सुनाती थी। इतनी वाणी में उसकी पावर थी और एक नंबर का भाषण करती थी, और वो भाषण भी है जो बाबा ने उनको सिखाया था, क्योंकि मनन शक्ति बहुत थी और बाबा हमेशा उनको कहते थे कि ये मेरी ज्ञान गंगा ये बच्ची है, ये शेरनी बच्ची है, ये पतित पावनी है, ये बहुत लोगों का उद्धार करेंगी। तो इस प्रकार बाबा ने उसको भाषण करना सिखाया। और उस दिन यज्ञ में एक मनोरिंद्रा दादी की 12 बहनों की एक पार्टी थी, तो उस पार्टी को बाबा मनोहर पार्टी नाम से जाने जाते थे। तो वो पार्टी के सब बहनें थी वो यानी बहुत अच्छे ज्ञान का मनन चिंतन करती थी, भाषण तैयार करती थी और हर प्रकार की सेवाएं करती थी। इसलिए ब्रह्मा बाबा भी हर जगह पर वो पार्टी को भेज देती थी सेवा करने के लिए, और वो खुशी से सेवा करती थी। तो इस प्रकार दादी मनोहर इंद्रा की विशेषता थी। तो उसमें जब बेगरी पाठ चला तब ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, एक एक दादियों को सेवा में भेज देते थे। तो फिर एक दिन बाबा ने दादी को बोला मनोहर इंद्रा कि आपको जो भक्तों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, कि हमको तो सुनाई दे रही है। तो फिर दादी ने मजाक से बोला कि हमें भगवान की आवाज़ सुनाई देती है, भक्तों की नहीं। तो फिर बाबा ने बोला कि आपको बाबा ने इतने ज्ञान रत्न दिए हैं तो वो ज्ञान रत्न का दान नहीं करेंगे क्या, सभी को बांटेंगे नहीं क्या? क्योंकि आपको दानी बनना है। तो इस प्रकार बाबा ने उसका उमंग उत्साह बढ़ाया और फिर दादी सेवा के लिए तैयार होगी। तो फिर सेवा में देखो बहुत समस्याएं विघ्न आया, मगर लेकिन दादी ने सेवा की। तो जब बाबा ने भेजा तो सबसे पहले दादी ने अपने लौकिक परिवार के और रिश्तेदारों की सेवा की, उनको बाबा का ज्ञान सुनाया। बाद में जैसे जिन जिन लोगों का निमंत्रण आता था वैसे वैसे दादी जाती थी और सेवा करती थी। तो ऐसी मंदिरों में है वहां पर जाके सेवा करती थी, गुरुद्वारे में जाके सेवा करती थी, हर जगह पर। तो ऐसी दादी एक मंदिर में आप निमंत्रण मिला, तो उस मंदिर में दिल्ली में एक मंदिर था चांदनी चौक में, तो उस मंदिर में दादी ने बाबा का ज्ञान सुनाना चालू कर दिया। तो वो जो ट्रस्टी था मंदिर का उसको बहुत अच्छा ज्ञान लगा वो। तो फिर उसने क्या किया, वो भाषण दीदी ने दादी ने दिया और वो बाबा का परिचय दिया तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसने उस मंदिर में दादी को एक कमरा दे दिया कि उस कमरे में अपना सत्संग चालू रखो। तो फिर वो सत्संग दादी ने चालू किया और ऊपर वहाँ सत्संग बहुत सारे लोग आते थे और उनको एकदम साक्षात्कार हो जाता था, तो ईश्वरीय नशा चढ़ जाती थी उन लोगों की और बहुत सारे संख्या बढ़ रही थी। तो ये जब वो ट्रस्टी ने देखा कि अभी तक किसी ने भी बोले साक्षात्कार नहीं कराया, मगर ये बहने साक्षात्कार कराती थी, इनके पास कोई जादू होंगी और इससे लोगों के मन में भ्रांतियां निर्माण होगी, तो फिर उसको डर लगा। तो उसने बोला कि आप दूसरा जगह ढूंढ लो, ये वाली जगह छोड़ दो, यहाँ पर अभी आप सत्संग नहीं कर सकती। फिर दादी ने वो जगह छोड़ दिया और फिर दूसरे जगह पर जो जमुना का घाट था वहां पर दादी को एक मकान मिल गया। तो वो मकान में देखो इस ऐसी हालत में दिखा ले तो दीवारें थी उस मकान को, एक भी पीछे भी और आगे भी कुछ दरवाजा नहीं था। तो ऐसे मकान में देखो दादी ने कितने दिन तक निकाला, यानी कितनी वैराग्य की भावना थी उसके अंदर। तो उस मकान में दो बहनें थी, तो एक बहन रात को सोती थी तो एक जागती थी, क्योंकि वो जमुना का घाट था, रात को तो कोई रहती नहीं थी वहां पर, सब अंधेरा रहता था, कोई रोशनी भी नहीं थी वहां पर, उस अंधेरे में वो लोग वहां पर रहते थे। तो तीन चार दिन के बाद वहां पर एक पहलवान आता था, तो सबको पता होंगे वो बात, और अभी दीदी दादी का सुना रहे तो वो भी बात सुना देती है। तो पहलवान ने देखा कि ये बहने इतने रात को यहाँ पर सोती अंधेरे में, तो ये कोई तो भी महान आत्माएं होंगी, साधारण नहीं होंगी, ये कोई देवियां होंगी, ऐसा उनको साक्षात्कार हो गया। और उसी समय उसने संकल्प किया कि वो पहलवान था, यदि मैं कुश्ती जीतूंगा तो ये देवियां सही में सच्ची है तो मैं कुश्ती जीतूंगा, तो उसको कुछ मैं पहरा दूंगा आज से, ऐसा संकल्प करके वो पहरा देना उसने चालू कर दिया। और बाद में वो कुश्ती जीत गया, तो जीतने के बाद उसको 100% ये हो गया कि ये दादी ये बहनी है, ये कोई थी देविया है, तो फिर इनको कुछ देना चाहिए, उसलिए उसने खीर का सामान लेकर गया और दादी को बोला कि मैंने ऐसा ऐसा संकल्प किया था और मैं कुश्ती जीत गया हूँ, उसमें मेरे को सफलता मिल गई, ये आप लोगों के कारण नहीं मिली, तो आप देविया हो तो ये खीर आप बनाओ और खाओ, आप खा लो। फिर दादी ने मना कर लिया, नहीं बोले हम किसी के हाथ का सामान लेते नहीं, मगर उसने बहुत फोर्स किया और बाद में उसने बोला कि हमने इतनी भावना रखी है, यदि आप नहीं लेंगे तो हमारे भावना को ठेच पहुँचेंगे, इसलिए ले लो। तो फिर उसकी भावना को जागरूक रखने के लिए दादी ने वो ले लिया, खीर बनाई और वो भाई को भी दिया पहलवान को और खुद भी खाई बाबा की याद में। तो इस प्रकार वहाँ पर वो पहलवान ने सेवा की, बाद में वो पहलवान ज्ञान में जुड़ गया। और उसमें एक माता थी, अमीर माता थी, वो सत्संग में वो पहलवान ने भी लेके आया उसको, तो वो माता ने भी वो सत्संग सुना तो उसको बहुत अच्छा लगा वो सत्संग। तो उसकी एक सिटी के बीच में एक धर्मशाला थी, तो उसने बोला दादी को कि हमारे एक धर्मशाला है, ये ऐसे स्थान पर आप क्यों रह रहे, तो हमारे धर्मशाला है, वहाँ पर आओ, वहाँ पर आप अपना सत्संग चालू करो। तो फिर दादी उधर गई, वहाँ पर सत्संग चालू किया, बहुत दिन तक वहाँ पर सेवा की और जहाँ जहाँ निमंत्रण आते थे वहाँ वहाँ दादी जाके सेवा करती थी। बाद में निमंत्रण किसका मिला भी नहीं, सेवा यानी कम हो गई, फिर दादी के लोग अभी कोई लोग बुला भी नहीं रहे, सेवा भी नहीं, भी क्या करेंगे। तो फिर दादी मधुबन में आ गई, तो जैसे दादी मधुबन में आ गई तो ब्रह्मा बाबा ने देखा, तो ब्रह्मा बाबा ने प्यार से बोला, दादी बच्ची आप सेवा क्षेत्र छोड़ करके वापिस आ गई, तो अपने इतने बाबा के बेहद ज्ञान रत्नों का दुकान खोलना चाहता, एक भी दुकान न खोलते वापिस आ गई। तो इसके कारण आप में योग बल की शक्ति कम है। तो ऐसा बाबा ने बोला। फिर दादी ने उस समय बोला कि बाबा हमने सेवा बहुत की वहां पर, लेकिन लोग विघ्न बहुत डालते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी मकान हमको कोई लोग देते है और बाद में लोग वो मकान वापिस ले लेते हैं और धर्म के कार्य में बहुत विघ्न आ रहे, ऐसी परिस्थिति में हम कैसी सेवा करेंगे। फिर देखो बाबा ने उनका उमंग उत्साह बढ़ाया कि बाबा ने कहा देखो ये भगवान का कार्य है, विघ्न तो पड़ेंगे लेकिन आगे सेवा भी बहुत बढ़ेगी। क्योंकि उस समय अपने 108 सेवा केंद्र थे, बाबा ने बोला 108 से भी ज्यादा सेवा केंद्र खुलने में, गली गली में सेंटर खुलेंगे और देश विदेश में बाबा के झंडे लहरेंगे, बोले इतनी सेवा होंगी आगे चलकर। तो ये बात सुन करके दादू एक तो हर्ष भी हो रहा था और एक तो आश्चर्य भी लग रहा था कि दादी को लगा कि आज एक सेंटर खोलने के लिए इतने विघ्न डालते हैं लोग और बाबा कह रहे कि देश विदेश में इतने सेंटर बढ़ेंगे तो कौन वहां पर सेवा करने के लिए जाएंगी, ऐसे दादी के मन में संकल्प चला। लेकिन बाबा पर उनका निश्चय भी था, चलो बाबा कह रहे तो हो भी जाएगा। तो फिर दादी ने वो इतना उमंग उत्साह आ गया दादी के अंदर कि वो फिर से दादी सेवा के लिए तैयार हो गई और इतनी धूमधाम से दादी ने फिर सेवा की, हर जगह पर दादी ने सेंटर खोले। तो देखो इस प्रकार दादी ने बाबा की आश पूरी की और जगह जगह पर सेंटर खुल गए। तो ये थे मनोरिंद्रा दादी की विशेषता। तो अभी हम देखेंगे दादी चंद्रमणि। तो यज्ञ इतिहास में दादी चंद्रमणि ने बहुत यानी हिम्मत वाली थी और वो डरती नहीं थी किसी को, यानी निडर होकर के भाषण भी ऐसी टॉप लेवल का देती थी कि सुनने वाले एकदम बाबा की बच्ची बन जाती थी। और उस समय जहाँ जहाँ पर भी ऐसे लोग हंगामे करते थे, कोई बहने बांधी लिए रहती थी, कोई माताएं बांधी ली होती थी, तो उसकी सेवा करने के लिए बाबा दादी चंद्रमणि को भेज देते थे। क्योंकि बाबा दादी चंद्रमणि को कहते थे कि ये मेरी यानी शेरे पंजाब, तो ये टाइटल तो बाबा ने दी थी उसको, लेकिन वो हनुमान बच्ची ही बोले। क्योंकि जैसे हनुमान यानी सीता को बाबा का पैगाम देते थे जैसे, तो वैसे आप सीता यानी हनुमान हो, सीता को बाबा की निशानी देनी है, ऐसे बाबा उसको करते बोलते थे और हर जगह पर दादी को भेज देते थे। जैसे कोई बांदिलिया माता है या बहनी है तो उनको घर के लोग आने नहीं देते थे सत्संग में, तो फिर वो आ नहीं सकते थे तो बाबा उनको दादी को भेज देती थी। ऐसी एक शीलिंद्रा दादी, वो बहुत बंधन में थी, घर के लोग बहुत लौकिक परिवार के उसको बंधन में रखते थे, तो वो इतनी बाबा की लगन वाली थी कि दिन रात बाबा के स्मरण में रहती, याद में रहती थी, बाबा के नाम लेती थी, तो उसकी वो सूक्ष्म में आवाज ब्रह्मा बाबा तक पहुंच जाता था बोलती थी। एक दिन ब्रह्मा बाबा ने बाकी बहनों को कहा कि शीलिंद्रा दादी को एक चिट्ठी देना है, तो कौन जाके देंगे। तो दादी चंद्रमणि ने एकदम हाथ उठवाया कि मैं जाके दे सकती हूँ बाबा। फिर बाबा ने उसको दी वो चिट्ठी, वो लेकर वो गई। तो वहां पर वो उसको इतने कमरे के अंदर 16 ताले के अंदर बंद करके रखा था बोलते, वो बड़ा मकान था। तो जब दादी गई देखा तो वो बड़ा मकान था और बहुत सारे कमरे थे वहां पर, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकती थी, घर के लौकिक परिवार के लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा ये आ गई करके। तो फिर दादी चारों तरफ घूमी वो मकान के, इधर उधर देख रही थी कि ये शीलिंद्रा दादी कहीं पर मिलती है क्या, कहाँ पर है। फिर शीलिंद्रा दादी एकदम ऊपर टेरिस पर एक पानी की टंकी थी उसके ऊपर बैठी थी और एकदम बाबा की याद कर रही थी, मुख से ऐसी बाबा का याद के नाम बोल रही थी बाबा बाबा करके। तो जैसे ही चंद्रमणि दादी की नजर गई उसके ऊपर, उसकी भी इसके ऊपर गई, तो एक दूसरे को पहचान लिया उन्होंने। और बाद में उसने इशारे से बोला कि कुछ बाबा ने भेजा है क्या, क्योंकि आवाज देती तो बाकी घर के लोगों को पता चलता ना, इसलिए कुछ बोली नहीं वो, ऐसे इशारे से बोला। तो फिर उसने बोला हाँ बाबा ने चिट्ठी भेजी है। तो फिर उसने धागा फेंका ऊपर से, उसमें वो चिट्ठी बांधी और फिर वो शीलिंद्रा दादी को चिट्ठी मिल गई। इस प्रकार देखो दादी हिम्मत करके बांधे लेके पास संदेश मुरलिया देती थी, बाबा जो भी चिट्ठियां देते थे वो पहुंचा देती थी। और एक विशेष बात बाबा ने कि एक वहां पर एक मुखिया था, वो बहुत बाबा का वैसा रिश्तेदार भी था मगर बहुत विरोध करता था। तो बाबा ने दादी को भेजा कि आप जाओ उस मुखिया को ज्ञान सुना, उसकी सेवा करो और एक टेपरी काट दिया उसमें गीत भरा इस पाप की दुनिया से, और उसको बोला कि वो जाके उसको गीत सुनाना। तो वो टेपरी काट लेकर दादी के, देखो एक दादी अकेली थी और वहां पर उतने सारे लोगों का जम होता, वो लोग भी बहुत विरोध कर रहे थे। और उन जब उनको उन लोगों ने दादी को देखा कि ये हमारी तरफ आ रही है, तो उस समय उन लोगों के मन में एक भ्रांति आती कि बोम मंडली वाले जादू करती है, तो उसने वो टेप रिकॉर्ड में कुछ जादू भर के लाया होगा, ऐसा उन लोगों के मन में भ्रम पैदा हो गया। तो भी दादी गई, उनके पास गई, उन लोगों का जो इकट्ठे जमे थे वहां पर, वो टेप रिकॉर्ड रखा वहां पर, जैसा गीत शुरू कर दिया इस पाप की दुनिया से, वो गीत सुना उन लोगों ने और उन लोगों को लगा कि ये जादू भरा गीत है बा, तो सारे लोगों ने वो पत्थर से वो टेप रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन दादी सारा सीन साक्षी होके देखती रही, वहां पर से हटी नहीं, देखो कितनी हिम्मत दादी की, और बाद में दादी वापिस आ गई। तो इस प्रकार जहाँ पर भी ऐसे कुछ होते थे दादी को बाबा भेज देते थे। और एक दादी की विशेषता, यानी वो एक संत था, साधु वासवानी जी, वो यानी बहुत नामी गामी संत था वो सिंध हैदराबाद में वहां पर। तो लोगों ने उसको ही भड़काया था, उस समय पिकेटिंग करते थे लोग, तो उसको भी भड़का कि आप भी चलो। तो फिर बाबा को पता चला कि ये भी आने वाला था, तो फिर बाबा ने पहले दादी को बोला कि आप जाओ उस संत की सेवा करके आ जाओ, उसको बाबा का ज्ञान सुनाओ, तो कोई उसमें परिवर्तन हो जाएगा, यदि उतना महान व्यक्ति है, सब नामी ग्रामी है, और यदि वो पिकेटिंग करेंगे तो लोगों को और भड़केंगे लोग, और लोगों की विरोध करने की संख्या बढ़ जाएंगी। तो इसलिए दादी को भैया, दादी गई, उस समय कार थी, दादी कार में बैठ कर गई, क्योंकि बड़े लोगों की सेवा करनी है तो बड़े साधन से जाएंगे ना, तो दादी कार में बैठ के गई। तो फिर उनके पास गई, साधु वासवानी जी के पास वो, और बाद में दादी ने उसको ज्ञान सुनाया। दादी ज्ञान तो अच्छे तरह से सुना सकती थी, तो उसको ज्ञान इतना अच्छा लगा कि वो ज्ञान पर प्रभावित हो गया, और बाद में उसने बोला कि बच्ची ठीक है, मैं आपके दादा को मिलने के लिए आता हूँ। फिर वो आया, आकर कार में बैठ गया, मगर उसके जो शिष्य थे उनको भ्रम पैदा हो गया कि यदि ये जाएंगा तो इसके ऊपर जादू करेंगे, तो ये वापिस ही नहीं आएगा, इधर वो ओम मंडली का हो जाएगा। तो फिर उन लोगों ने बहुत विरोध किया, जाने नहीं दिया, लेकिन उसने उन शिष्य को समझाया कि मैं जाता हूँ, बोले दादा को मिलकर आ जाता हूँ, आप घबराओ नहीं, मैं कहीं मेरे ऊपर जादू नहीं करेंगे वो लोग, मैं वापिस आ जाऊँगा। लेकिन शिष्य ने वो आगे लेट गए, वो यानी कार के आगे, कार को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो फिर वो संत जी ने बोला दादी को कि बेटी मेरी इच्छा बहुत थी आने की आपके सत्संग में बाबा दादा को मिलने की, लेकिन अब ये लोग नहीं बोल रहे, तो फिर मैं कभी भी आऊँगी। तो फिर दादी ने बोला ठीक है, क्योंकि आपकी मर्जी, बोले आओ चाहे ना आओ, लेकिन हमारा काम तो हमने कर दिया, क्योंकि आपको भगवान का संदेश देना था वो दे दिया, बोले फिर आपकी मर्जी। फिर दादी वापिस आ गई। तो इस प्रकार दादी निर्भय होके न डरते हुए सेवा करती थी। तो हापुड़ का हंगामा, वहां पर भी बहुत कुछ जगह जगह पर लोगों ने हंगामा किया था, बाबा ने दादी को भेजा, तो उसने कठिन परिस्थिति में जाकर के भी दादी ने वो भी हंगामा ठीक कर दिया। तो इस प्रकार दादी यानी निर्भय थी, किसको डरती नहीं थी, और यज्ञ में इतनी दादी ने सेवा की। तो ये दादी की विशेषता थी। और एक अभी लास्ट में दादी जानकी जी का सुना देता हूँ, ये अभी समय तो हो गया। जैसे दादी जानकी जी अपने यज्ञ की मुख्य प्रशासिका थी, जब दादी प्रकाशमणि ने देहांत तो हो गया तो दादी बनी, तो दादी को कभी ऐसा पद पूजी संघ का अभिमान नहीं था कि मैं इतने यज्ञ की मुख्य प्रशासिका हो गई हूँ, तो दादी ने कभी उसका अभिमान नहीं किया, और दादी ने हरेक को आगे बढ़ाया और आगे रखा। और दादी हरेक को ये समझती थी कि मैं आपकी दोस्त हूँ, मेरे को एक बड़े पोज के हिसाब से नहीं देखो, एक दोस्त के हिसाब से देखो। और हरेक को वो अपने दिल की बात सुनाती थी और उनकी भी बात सुनती थी। बाबा ने उनको जनक का टाइटल दिया था, क्योंकि दादी यानी बहुत विधि स्थिति में रहती थी, सदा बाबा के ज्ञान मनन चिंतन में रहती थी और याद में रहती थी, उसी कारण बाबा ने उसको दादी को वो टाइटल दिया था जनक। हाँ, मस्त फकीर थी वो। और दादी का मुरली से बहुत प्यार था, यानी मुरली कभी मिस नहीं की दादी ने। और एक बार बाबा को पूछा कि बाबा मुझे मुरलीधर बनना है तो क्या करूँ, तो बाबा ने कहा कि बच्ची आप 18 बार मुरली पढ़ो। तो दादी देखो 18 बार मुरली पढ़ती थी, और ऐसा नहीं कि सारे दिन पर मुरली पढ़ती रहेंगी, बाकी सेवा भी करती थी। और दादी में लास्ट तक यही विशेषता रही कि जो किसी को भी ज्ञान सुनने बगैर नाश्ता नहीं करती थी, कि कोई भी जब तक नहीं मिलेगा तब तक दादी नाश्ता नहीं करती, पहले ज्ञान मुरली के 2 पॉइंट सुनाएंगी तब नाश्ता करती थी, एक दादी की विशेषता थी। तो दादी की ये थी। तो इस प्रकार हमारे दादियों ने यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वा करके यज्ञ को आगे बढ़ाया। भलाई वो दादी आज जिस यहाँ में तन में नहीं है, लेकिन जब थी दादिया तब उसने विशेष कमाल की सेवा की यहाँ पर और यज्ञ को आगे बढ़ाया। तो ऐसे दादिया को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। ओम शांति।